प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 9 अगस्त 2017 के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए विषय का चयन करने में सच पूछे तो मुझे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। दिमाग में इतने सारे टॉपिक चल रहे थे, इतने सारे तथ्य चल रहे थे, फिर मुझे लगा कि आज 9 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ है, तो क्या मैं इसी को लेकर कुछ बातें आपसे शेयर करूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, उन बातों के बारे में आप सब काफी कुछ जानते भी होंगे, तो मुझे कल की ही अपनी बात को थोड़ा और गहराई के साथ विस्तार देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कल की ही बात को आज आगे बढ़ाना चाहूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि कहीं ना कहीं मैंने अधूरी बात कही है और पूरी बात न कह पाने के अपराध बोध से मैं ग्रसित भी रहता। तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि कल हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम एक ही घटना, एक ही कहानी, उन सबको अलग अलग एंगल से सोच सकते हैं और सोचना ही चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा कि उसी दौरान मैंने एक बात आप सबसे कही थी कि जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं या कोई भी घटना होती है, हमारे साथ हो या दूसरों के साथ हो, अखबारों में भी हम पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में तत्काल इमीडिएट उसका एक उत्तर कौंध जाता है, हम ऐसा करते या उसको ऐसा करना चाहिए। आप देखिए कि जब ये बात आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगी जब लोग क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, ग्रुप में देख रहे होते हैं। आप देखिए कि क्रिकेट खेला जा रहा है और बड़ा सेंसिटिव पॉइंट आ गया है, बड़ा संवेदनशील क्षण है, और उस समय लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं और एक एक बॉल और एक एक हिट पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अरे उसको ऐसा करना चाहिए था, अरे इसको इतनी भी समझ नहीं है, अरे ये इसने क्या किया। अब भैया, वो लोग खेल रहे हैं और वो सारे संकट से जूझ रहे हैं, उनको भी जीतने की पड़ी हुई है, और केवल हमारी ही टीम को जीतने की नहीं पड़ी है, सामने वाला टीम भी उसी तरह से जीतना चाह रहा है, तो वहां कितना भयानक अंतर्द्वंद है। तो उसमें वो जो भी बेहतर तरीके से कर रहा है वो करने की कोशिश कर रहा है, कोई जानबूझ कर वो आउट थोड़ी हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए, जबकि हम उसके विशेषज्ञ नहीं है, मात्र एक दर्शक हैं। सामान्य तरीके पर, सामान्य रूप से हम भी उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और हम अपने उस सामान्य जानकारी को ही एक विशेषज्ञ की जानकारी में तब्दील कर देते हैं, जैसे कि कोई एक्सपर्ट हम ओपिनियन दे रहे हो। मित्रों, ऐसा क्यों होता है और क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हम सबके पास ज्यादातर जो आम किस्म के विषय होते हैं उनके बारे में अपने अपने व्यू होते हैं, पर्सनल व्यू होते हैं, और मेरी इस बात को खासकर ऐसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज पर खासकर लागू कर सकते हैं, और जो जनरल स्टडीज की तैयारी नहीं कर रहे हैं और जीवन के संदर्भ में सुनते हैं मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट को, तो वो जीवन में लिए गए निर्णयों पर भी इसे बकायदे लागू कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पर जो जीवन की हमारी रोज की घटनाएं होती हैं उन पर हमारी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रहती हैं। सच पूछे तो ये जो हमारे रिएक्शन है, हम जो तुरंत कहते हैं, प्रतिक्रिया का मतलब मैं ये कह रहा हूं, जो हम तुरंत सुनते ही कह देते हैं, यही हम होते हैं, यानी कि इसमें हमारा कोई ज्ञान नहीं होता। सच पूछे तो इसमें हमारा कोई दिमाग भी नहीं होता, हमारी कोई सोच भी नहीं होती। सच यह है कि हमारे अंदर एक मैकेनिज्म बना हुआ है, पहले से फिट है, वो मशीन है हमारे अंदर, और उस मशीन के तहत वो तुरंत रिएक्शन बाहर आ जाता है। जैसे हम कोई अगर बॉल लें और बॉल को दीवार पर मारें तो क्या होगा, इमीडिएट वह दीवार बॉल को वापस कर देगी और बॉल हमारे पास वापस आ जाएगी या कहीं भी चले जाएगी, मतलब वो रिएक्शन में बॉल चली जाएगी। तो वह एक इनबिल्ट सिस्टम है नेचर का, राइट। तो दोस्तों, नेचर जिस तरीके से काम करती है, याद रखिए कि हमारा भी एक नेचर होता है। आपने देखा है ना कि आदतों को हम क्या कहते हैं, यार उसका नेचर बड़ा खराब है, यार उसका नेचर तो बहुत अच्छा है, हम ये कहते हैं। तो ये नेचर कहां से है, मतलब वही कि जो मैकेनिज्म है उसके तहत आप काम कर रहे हैं, वहां बौद्धिकता नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी हमसे कोई प्रश्न पूछता है, किसी भी इश्यू पर हमारी कोई राय लेना चाहता है या हमारे साथ कोई घटना घटती है, तो देखिए दो बड़ी अलग अलग चीजें हैं। एक तो है कि हम रिएक्ट करते हैं, तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, इसको मैं कहता हूं रिएक्शन। और दूसरा है हम रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई का मतलब है कि हमने सोचा समझा और तब हमने उत्तर दिया। अब आप यहां ये प्रश्न कर सकते हैं मुझसे कि सर ये कह रहे हैं आप कि सोचा समझा और हमने उत्तर दिया, तो अगर हमको तुरंत रिप्लाई देना है तो ये सोचने समझने का टाइम कहां है, लगता है ना ऐसा। लेकिन हमारे दिमाग की गति इतनी तेज है फ्रेंड्स कि अगर हमने ट्रेंड कर लिया तो ये बकायदे सोच समझ कर रिप्लाई देता है। यहां दोस्तों मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा अपने क्लास स्टूडेंट्स को, जिन्हें मैंने अभी पिछले सप्ताह स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा है और उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक इंटरव्यू का वर्णन किया है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मेरी इस बात को वो उससे भी जोड़कर देख सकते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू देने वाला जो स्टूडेंट है, जो जवाब दे रहा था, वो अपने इंटरनल मैकेनिज्म के आधार पर दे रहा था जो पहले से इस्टेब्लिश है, वो सोच समझकर अपनी बौद्धिकता के आधार पर नहीं दे रहा था। तो आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। और सच पूछिए तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा विषय है, तो यह बात मुझे मेरे सभी प्रिय श्रोताओं तक पहुंचानी चाहिए। होता क्या है फ्रेंड्स, अब यहां इसे समझने की कोशिश कीजिए। हम सबका एक सबकॉन्शियस माइंड है, कल भी मैंने इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये बनता चला जाता है, जिसे हमारे भारतीय दर्शन में संस्कार कहा गया है। बोलचाल की भाषा में भी हम इसका खूब इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करें तो संस्कार बिल्कुल ही सबकॉन्शियस माइंड तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी काफी कुछ उसका मेल बैठ जाता है। हमारे संस्कार हैं, ये संस्कार हमारे अंदर समा गए हैं, यही हमारा मैकेनिज्म है। तो हमारा जब रिएक्शन होता है तो इन संस्कारों के अनुकूल ही होता है, और ये इतने जबरदस्त रूप से काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण बताऊं फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जब आइंस्टीन अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे तो वो मतलब बेहोश से हो गए थे, कोमा में आ गए थे कहा जाता है, तो उस समय वो बुदबुदा रहे थे, और जो बुदबुदा रहे थे वो अपनी मातृभाषा में जर्मन में बुदबुदा रहे थे, जबकि उनकी जो जो ज्ञान की भाषा थी वो इंग्लिश थी, इंग्लिश में ही उन्होंने सब कुछ लिखा, अमेरिका ही फिर आ गए थे बाद में रहे, लेकिन जो मातृभाषा थी जर्मन वो उसमें बुदबुदा रहे थे। आपने महसूस किया होगा जब हम अचानक ठोकर खा करके गिरते हैं या कुछ घटना होती है तो लगता मुंह से निकलता है ओमा ओमा है ना, उसमें फिर मम्मी मॉम नहीं निकलता है ना, ओमा या माई मदर ओमा मदर नहीं निकलता। ये भाषा कहां की है, ये भाषा हमारे सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है, यानी कि यही हम हैं, यही हम हैं। तो मित्रों जो तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है वो सच पूछे तो आदमी की सही पहचान होती है। हाँ ये बात अलग है कि उसी पर वह सोच विचार करे और सोच विचार करने के बाद बिल्कुल वही बात कहे जो उसके तात्कालिक प्रतिक्रिया में थी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो तात्कालिक प्रतिक्रिया देते हैं वो हमेशा गलत ही होती है, ये लेकिन ये पक्का है कि जो हमारी तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है वह हम ही होते हैं, वह हमारा प्रतिनिधित्व करती, सबसे ईमानदार प्रतिनिधित्व वह हमारा करती है। अब ये बात अलग है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी जो सोच है सबकॉन्शियस माइंड की, और हमारे जो कॉन्शियस माइंड की सोच है, यानी कि जो हम बहुत विचार करने के बाद जो प्रतिक्रिया देते हैं, उत्तर देते हैं, आप इसे उत्तर भी कह सकते हैं, उन दोनों में समानता है। तो ये तो आदर्शतम स्थिति है, मतलब ये तो सोने में सुहागा है कि मैं जैसा अंदर हूं वैसा ही बाहर भी हूं, फिर कहना क्या। तो दोस्तों इसीलिए देखिए कि आप इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है, बातचीत करके आपके ज्ञान की परख करना इंटरव्यू का पर्पस नहीं होता। इंटरव्यू का तो पर्पस होता है कि आपके अंदर घुसकर आपकी सच्चाई को जाने कि आप अंदर से क्या हैं। अब अंदर वैसे तो घुस नहीं सकते, यानी कोई कुआं तो है नहीं कि आप सीढ़ी डाल करके उतर जाइए, ना कोई मशीन है कि आप अंदर के एक्सरे ले लीजिए। तो उसके लिए फिर क्वेश्चन आंसर सेशन तैयार किया गया है कि बातचीत से वो जो अनुभवी लोग होते हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो उन्हें पता चल जाता है कि अंदर से ये क्या है। फिर अगर मैं बनावटी बात उनसे कहूंगा, वो जानते हैं कि जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो मैं बड़े बड़े आदर्श की बात करूंगा, ईमानदारी की बात करूंगा, देश सेवा की बात करूंगा, जन सेवा की बात करूंगा, लेकिन मैं जो मेरे बोलने का जो तरीका है और जो दूसरे तौर तरीके वो सब जानते हैं उससे वो पकड़ लेते हैं कि ये जो कह रहा है ये कितना सही कह रहा है, कितना गलत कह रहा है। तो मित्रों, खासकर अगर हम सब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना चाहते हैं, ट्रेंड इस मायने में कि जो मैं रियल में हूं और जो मैं दिखा रहा हूं कि मैं ये हूं, उसमें मिनिमम गैप हो। चलिए, बहुत ही आदर्शतम स्थिति है वो तो संतों के पास ही होता है, जो बहुत पहुंचे हुए संत हैं कि जैसे हैं वैसे हैं। अदरवाइज देखिए, हम सब तो मानव हैं, थोड़ा बहुत तो अंतर रही जाता है क्योंकि हम जो हैं वो अलग हैं। दूसरा ये कि जब हम उस तरीके के समाज के बीच पहुंच जाते हैं तब फिर हमें थोड़ा सा उस समाज के अनुसार अपने को ढालना पड़ता है। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि जब आप रोम में हैं तो रोमन्स की तरह बिहेव कीजिए, तो वहां हमको अपने व्यक्तित्व से थोड़ी सी विदाई लेनी पड़ती है और वहां के तौर तरीकों के अनुसार काम करना पड़ता है। लेकिन बड़ी चीजों में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे विचार के तरीके हैं, हमारे सदाचरण हैं, हमारा व्यवहार है, ये सब उसके साथ मैच करने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस सब कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा पकड़ने लगे, कोई भी घटना घटती है, कोई भी कहानी सुनते हैं, किसी भी इश्यू पर हमें अपने विचार देने हैं, तो थोड़ा सा रुकें, तुरंत न कहें, सोचें और सोचने के बाद फिर अपनी बात रखें। और जब हम उस पर सोच रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोच रहे हैं, एक ही कोण से नहीं सोच रहे हैं, अलग अलग कोणों से सोच रहे हैं, तब जो हमारा उत्तर होगा वो परफेक्ट आंसर होगा। और धीरे धीरे फिर यही सोचने विचारने की आदत और इस तरह के दिए गए उत्तर हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चलते चले जाएंगे। तो अगर दोनों में कोई विरोध हुआ तो फिर वह हमारे सब कॉन्शियस माइंड का जो विरोध है वो करेक्ट होता चला जाएगा और फिर हम जो हैं और बाहर जो कह रहे हैं उसमें फिर या जो कहा जाना चाहिए उसमें तालमेल बैठता चला जाएगा। तो मित्रों, ये मैंने थोड़ी सी बात कही कल की बात को पूरा करने के लिहाज से, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पर बातचीत करने किया जाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।